میں کچھ سوچ کے نہیں آیا ہوں. کیا سننا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ میں رات کو بہت دیر سے پہنچا, 12 بجے. سوچا تو تھا سو جاؤں گا, پر سونے تو نہیں دیتے لوگ, اس لیے آپ لوگوں نے جگایا مجھے. ورتمان سمے ہم سبھی کو ایک چیز کی بہت پریکٹس کرنی ہے, پورا دھیان دینا ہے اس پر, اور وہ ہے ساکشی درشتا. بہت کم لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں برہمنوں میں, پر آنے والا سمے اور ورتمان میں استھتی کو مہان بنانے کے لیے, آنے والے سمے میں اپنی استھتی کو اچل ڈول رکھنے کے لیے ساکشی بھاو کی بہت ضرورت ہے. کیا ہے وہ, ہم اس پر چلیں گے, اور سب کو اس کی پریکٹس کرنی ہی ہے. ایک آتما ابھی میرے پاس آئی, میں تو مجھے یہاں آنا تھا اس لیے تھوڑی سی دیر بھی ہوئی. کہا میں بہت اونچے ارادوں سے آئی تھی, سوامی ویویکانند کو پڑھتی تھی, مدر ٹیریسا کو پڑھتی تھی, جاب میں بھی تھی, سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گئی, لیکن گڑبڑ ہو گئی. وہ شکایت کرنے لگی دوسروں کی. میں نے کہا نہیں, آپ نے وہ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. جہاں کمپلینٹس ہیں, بابا کے شبد ہیں, وہ آتما کمپلیٹ نہیں بن سکتی. اور بہت سارے برہمن کمپلینٹس کرتے ہوئے جی رہے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہوئے جی رہے ہیں. کہا میں تو سوچا تھا یہاں ستیہ ہوگا پورا, پر یہاں تو گڑبڑ ہو گئی. اوپنلی بول رہا ہوں, سب جانتے ہیں. میں نے کہا کلیوگ ہے, سنگم بھی تو کلیوگ کا حصہ ہے نا, اور سنگم نواسی آدھے سے زیادہ ٹائم کلیوگ میں رہتے ہیں, کلیوگ کا پربھاو ان پر بھی ہے. ستیہ میں شکتی تو ہے, لیکن اب وہ شکتی کم ہو گئی ہے, اس لیے ستیہ کی ہار ہوتی ہے. ستیہ میو جیتے, یہ تو ہمارے بھارت کا کیا کہیں, اس کو ایمبلم کہیں یا ایک مکھیہ بات ہے, لیکن اب یہ اسطیہ میو جیتے میں بدل گیا ہے. ستیہ کی ہار, اسطیہ کی جیت. اگر ہم اس چکر میں جائیں گے تو وہ نہیں کر پائیں گے جس کے لیے ہم بابا کے پاس آئے ہیں. ہم آتماؤں کے پاس تھوڑا ہی آئے ہیں, منشیہ گڑبڑ کر رہا ہے. آئے تھے بھگوان کے پاس, پر سوچ لیا بھائی بہنوں کے پاس آئے ہیں, ان کو دیکھنے میں لگ گئے. وہ اچھے ہوں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں, پر کیا ضروری ہے وہ اچھے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری اور دیکھ رہے ہوں, یہ اچھے ہوں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں. ایک بھائی بڑے نشے میں, بڑا امنگ میں, یو پی کا, کہتا مجھے ستیہ کی کھوج ہے, اب تک بھی کوئی بھی ستیہ سوروپ میں استھت ہوا نہیں دکھتا. میں نے اسے کہا بس آپ ہی ہو جاؤ تو جن کو ستیہ کی کھوج ہے ان کی پوری ہو جائے گی نا آپ کو دیکھ کے. گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ ہر منوش اپنے کو نہیں دوسرے کو بنانا چاہتا ہے. اچھی بات ہے ویسے, سبھاونا ہے, سب سمپورن ہو جائیں, سب اچھے ہو جائیں سوائے میرے, ایسا سوچتا ہے نا ہر منوش. لیکن یہ انگلی ہمیں اپنی اور کرنی ہی چاہیے, ساکشی بھاو. بہت اچھے ایک مہاواکیہ کو لے کر ہم چلیں گے, تھوڑے آگے ہو جائیں بھائی. اور وہ مہاواکیہ ہے جو ساکشی استھتی میں استھتی स्थित रहते हैं, वही साथी के साथ का अनुभव करते हैं। भगवान हमारा साथी है, शिव बाबा हमारा साथी है, इसका अनुभव वही करते हैं जो साक्षी भाव में रहते हैं। ठीक है, अब सोचेंगे, इन शब्दों पे ध्यान दें बाबा के। बाबा हमारा साथी है, गहराई से सुनना, और हमें ये याद रखना है, हमें उसको अपना साथी बनाना है। दो बातें हो गई। वो कह रहा है मैं तुम्हारा साथी हूँ, और हम सोचते हैं हमें उसको अपना साथी बनाना है। अंतर हो गया ना थोड़ा। अब मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, और ये कहानी संगम युग की सत्य कहानी है, पर है महाभारत की। महाभारत युद्ध पूर्ण होने के बाद अर्जुन और भीम को संकल्प था हम इस युद्ध के नायक हैं, सबसे अधिक वीरता हमने दिखाई है। श्री कृष्ण उनको वेद व्यास जी के पास ले गए। वेद व्यास ने कहा कि मैं तो सारा युद्ध नहीं देखा है, एक महात्मा युद्ध देख रहा था, उसके पास चलते हैं। उस महात्मा की कहानी है बहुत वंडरफुल, मैंने पहली बार सुनी अभी दो चार दिन पहले, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। कहानी नहीं पर जो बात है इसके बाद, कहानी ये थी, भीम का पौत्र बर्बरिक नाम था उसका, थे तो वे राक्षस, घटोत्कच का पुत्र, उसने अपनी साधनाओं से बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली, शक्तियां। अब वो युद्ध में जिधर हिस्सा लेगा वो सबको नष्ट कर देगा एक दिन में दूसरी तरफ, लेकिन उसकी शर्त है जो सेना कमजोर पड़ेगी मैं उसी तरफ चला जाऊंगा, एक जगह नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। तो पांडवों में चिंता हो गई कि ये तो हमारी जीत होने लगी तो कौरवों से जा मिलेगा, कौरवों की जीत होने लगी तो फिर हमारे पास आ जाएगा। श्री कृष्ण को भेजा, वो श्री कृष्ण को देख के बहुत खुश हुआ और बोलने लगा आप तो मेरे ये हो ये हो, सदगुरु भी आप ही हो मेरे, आपने मुझे सिखाया है। तो श्री कृष्ण ने कहा सदगुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए बोलो, जो आप कहेंगे वही दे दूंगा, आपका शीश चाहिए। कहा तो ले लो, कहा लिया नहीं जाता दिया जाता है। उसने तलवार से अपना शीश काट के दे दिया। श्री कृष्ण ने उसको वरदान दिया तुम्हारा शीश कुछ समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा थी मैं ये महाभारत का युद्ध देखूं। तो उसको पांडवों ने स्थित कर दिया एक पहाड़ी पर, उसका शीश रख दिया कि यहां से तुम महाभारत देखते रहना। हम समझ गए भगवान कौन सा शीश लेता है हमसे, ये सिर अहंकार का सिर, बुद्धि में ही अहंकार होता है ना। जहां भी शीश लेने की बात हुई है लोगों ने उसको स्थूल दिखाया है, पर वो बुद्धि के अहम को लेना होता है, और जो इस अहम का त्याग कर देता है वो बहुत महान बन जाता है। तो पांडवों को लेकर श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास के साथ उसके पास पहुंचे, इसलिए श्री कृष्ण ने उसका नाम फिर महात्मा रख दिया था कि तुम बहुत महान पुरुष हो जिसने अपना शीशी दे दिया। कहा महात्मन अब ये बताओ आपने सारा महाभारत युद्ध देखा है, महाभारत युद्ध के नायक कौन है। अब ये है हम सबके काम की बात। उसने कहा मैंने सारा महाभारत देखा पर मुझे दो ही चीज दिखाई दे रही थी, हर सैनिक के पीछे श्री कृष्ण थे और युद्ध में केवल उनका स्वदर्शन चक्र ही चारों ओर घूम रहा था, वही संहार कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, पांडवों के ले जाने का लक्ष्य पूरा हो गया कि तुम नायक नहीं, नायक तो कोई और था। पर इस बात से मुझे भी बहुत नशा चढ़ा, ये बात अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने देखी। मुझे भी बहुत श्रेष्ठ स्मृति हुई। मुझे पता तो था इस कहानी का, पर इतना रियल नहीं पता था कि इसने मुझे क्लिप दिखाई। बाबा ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। हम अकेला पाते हैं अपने को। बाबा ने कभी हंसी में ये भी कह दिया था बच्चे तो बाप से भी अधिक पावरफुल हैं। हंसी में कहा मैं हूँ साथ, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, और बच्चे सर्वशक्तिवान को भी हटा देते हैं, पावरफुल हो गए ना। अगर हमें ये पूरा रियलाइजेशन हो, एहसास हो कि बाबा अपनी हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, क्या हो जाएगा फिर? विजय हमारी। अब देख ले आप इसको कैसे अपनी गुड फीलिंग में लाएंगे। बार बार इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि सर्वशक्तिवान अपनी संपूर्ण शक्तियों के सहित मेरे साथ है। इसको स्मृति में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है, तो इसकी नेचुरल फीलिंग हो जाएगी। तो जब महाभारत युद्ध होगा, एक युद्ध है माया से हमारा युद्ध, ये भी महाभारत से कम नहीं, इसमें भी हमारी विजय। और जब महाभारत होगा, भाई ये दरवाजा बंद कर लो, नहीं ये शादी आजकल होती है ना बहुत, तो ये भी कर लो, ये खिड़की बंद कर दो तो आवाज कम हो जाएगी। तो जब असली महाभारत होगा, तब अगर हमें ये स्मृति रहेगी बाबा मेरे साथ है, तो अगर बम भी गिरा दिया गया होगा ना, वो भी नहीं फटेगा। अगर चोर डाकू आपके घर में आ गए होंगे, वो भी शांति से चले जाएंगे। बहुत वंडरफुल अनुभव होगा, क्योंकि विनाश काल का किसी को भी पता नहीं है वो कैसा होगा, किसी को पता नहीं। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है मुरली में, तुम चलोगे तो कैसा दिखाई देगा, तुम नहीं जा रहे हैं, लाइट जा रही है। किसी के घर तुम जाओगे, अब आगे की बात, तो ऐसा लगेगा कुछ क्षणों के लिए उनको लाइट आ गई घर में, चित्त हो गए। लेकिन ये किसका होगा? जिन्होंने अपने को एक तो बहुत लाइट रखा है, हल्के, और जिनके पास प्योरिटी और ज्ञान की लाइट बहुत ज्यादा होगी। ये दोनों लाइट हैं हमारे पास, योग से शक्ति माइट मिलती है और ज्ञान से और प्योरिटी से लाइट मिलती है। जिनके पास ये दोनों लाइट हैं, आप सब कह सकते हैं ज्ञान तो हम सबके पास है, लेकिन ज्ञान को लाइट बना देना, ज्ञान को अपनी विजडम बना देना, ज्ञान को यूज करके ज्ञान को अपनी शक्ति बना देना, इसकी जरूरत है। ज्ञान हम सबके पास है, हम इसे अपनी विजडम बनाएं। विजडम समझते हैं, विवेक, इसका सार है विवेक, विजडम। वो हमारी बुद्धि में भर जाएगा, वो हम बनाएं। और ज्ञान को जितना हम यूज करेंगे, ज्ञान की हर पॉइंट हमें शक्ति देगी। इसलिए सभी को अपने पास ज्ञान की कम से कम 25 ऐसी पॉइंट लिख कर रखनी चाहिए, अलग अक्षर, मोटे अक्षरों में अलग। रोज की मुरली लिखना वो अलग, उसे तो आप पढ़ते भी नहीं होंगे। उनमें से कोई एक पावरफुल पॉइंट, जैसे आज की मुरली में एक दूसरी पॉइंट भी थी, ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने बोलो किसको याद है? बीजी नहीं देखा, याद है? हमेशा टाई में हल्के हैं, जबकि अब तो यज्ञ में भी काम करने वाले बहुत लोग हैं। तब यज्ञ भले ही छोटा था, पर सारे काम करने वाले तो अकेले बाबा ही थे, जो बड़े काम है जिम्मेदारी। अगर लाइट नहीं है, बिजली का काम कराना, वो बाबा को ही सोचना है। अगर भोजन अन्न आना, स्टोर भरने, वो बाबा को ही सोचना है। अगर कारपेंटरों से कुछ कराना, मकान बनाना, वो बाबा को करना है। अब तो नहीं है, बाबा कभी बिजी नहीं थे। ज्ञान के पॉइंट्स का प्रयोग करना, ये भी एक पॉइंट है ना। अब मैं आपको एक पॉइंट सुना रहा हूं, मैं बहुत सुनाता हूं वो क्लासेज में, क्योंकि वो मेरी प्रिय पॉइंट है और मैंने भी उसको के बहुत सुंदर अनुभव किए हैं। मन के सारे बोझ मुझे दे दो, आगे के शब्द बाबा के बहुत अच्छे हैं। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? ऐसी पॉइंट आपको लिखनी है। तो मन जब भी भारी हो जाए, बोझिल हो जाए, मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दो, हल्के हो जाएंगे। पर इसमें हमें लंबे समय के अनुभव चाहिए, नहीं तो जिसको अनुभव नहीं वो कहेगा बाबा को बोझ दे दिए, सुना दिए, पर बोझ तो फिर हमारे पास रह गए, ये तो गए नहीं कहीं, क्योंकि सोचने की ज्यादा आदत है। इसलिए लंबे काल का अनुभव, बोझ दिए और हल्के हो गए, क्योंकि जिसको बोझ दे रहे हैं उसका पता हो जाएगा वो कौन है। वो कौन है ये जानना बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी है बाबा के शब्द साकार मुरली के। जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान साथ है, बोझ सब उसको दे दिए, वो सब ठीक कर देगा, उसमें पूरा विश्वास हो जाएगा। उसको जानना अति सुख संबात है, और उसको जानने के लिए स्वयं को जानना और उसके लिए योगयुक्त रहना बहुत आवश्यक है। स्वमन की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। ऐसी 25 पॉइंट लिख कर रखो, ये हो जाएगा ज्ञान का बल, ये बनाएगा हमें बहुत लाइट, बोझ नहीं रहेगा मन पर। बहुत सारी माताएं आती हैं हमारे पास, मुझे उनको देखकर हंसी भी आती है। मेरी बच्ची 9 साल की है, मुझे बहुत चिंता रहती है इसका भविष्य क्या होगा। एक माता का तो ऐसा हाल, उसका लड़का 5 साल का, उसको उसके भविष्य की बहुत चिंता। मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने उसे पूछा, मरने का प्रोग्राम मिल गया? कहा नहीं, मुझे डर रहता है। ये व्यर्थ है ना, जब तुम नहीं थे तब भी तो ये संसार था, और जब तुम नहीं होंगे तब भी ऐसे ही चलेगा, या नहीं? इसलिए ये व्यर्थ की जो चिंताएं मनुष्य करता है, इससे अपने को मुक्त करने के लिए ज्ञान का बल। तो बाबा हमारे साथ रहता है, इसको पक्का कर दें। ये योग हो जाएगा पावरफुल, क्योंकि इससे डर खत्म हो जाएंगे, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मन के बोझ हल्के हो जाएंगे और हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। बाबा का एक महावाक्य है बहुत सुंदर, ये भी साकार मुरली से है। अगर तुम इस नशे में रहो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उसकी शक्तियां तुम में समाती रहेंगी। साथ हो कोई, हमारे पास बर्फ रख दिया जाए तो क्या समाने लगेगा हमारे अंदर, बोलो, ठंडक। आग जल जाए चारों ओर हमारे तो क्या समाने लगेगी, और भगवान हमारे साथ हो तो जो कुछ है, जो कुछ वो है, वो हमारे अंदर समाने लगेगा। वो प्यार का सागर है तो उसका प्यार समाने लगेगा, वो शांति का सागर है तो उसकी शांति समाने लगेगी, वो सुखदाता है तो हम भी सुख देने वाले हो जाएंगे, उसका सब कुछ हम में समाने लगेगा। तो बाबा हमारे साथ है एक ये बात, और दूसरा इसी में अभ्यास है, बाबा का आह्वान करना, दोनों को जोड़ ले आप, अब उसको बुलाया भी करें, साथ आ जाओ, नीचे आ जाओ, उसके भी अनुभव बहुत डिवाइन होंगे। साक्षी भाव बहुत गहरी स्थिति है, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूं आपको, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो साक्षी भाव पर बहुत ध्यान देंगे। पहली पावरफुल पॉइंट, मोस्ट पावरफुल, इससे सूक्ष्म बात और नहीं होगी। जो आत्माएं, लिख लो, जो आत्माएं साक्षी भाव में रहते हैं, जो आत्माएं साक्षी भाव में रहते हैं, वे एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकते हैं। सोच लें आप, ये कैसे संभव होगा, एक मास का काम एक घंटे में, अर्थात एक दिन का काम दो मिनट में। अब क्लियर हो जाएगा, एक दिन का काम दो मिनट में ही हो जाएगा। कैसे, इस तरह इसको समझ लें, आपको किसी काम में सारा दिन लगना पड़ता है, उलझनें होती रहती हैं, काम बिगड़ता रहता है, विघ्न आते रहते हैं, असफलता होती रहती है, आप लगे रहते हैं, वो काम एक दिन में पूरा होता है। लेकिन अगर साक्षी भाव हो तो करते ही जल्दी पूरा हो जाएगा, न उलझने आएंगी, न विघ्न आएंगे, न सफलता होगी, और हमारी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि साक्षी भाव होने से हमारे संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं आप सबको एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आत्माएं तो सभा में बहुत अच्छे योगी बैठे ही हैं, ऐसा समय आएगा, बाबा के शब्द उन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं, यहां तुम संकल्प करेंगे वहां होगा। आप हैदराबाद से आए हैं, आपको किसी बात की चिंता हो रही है, किसी का फोन आ गया, फलाना व्यक्ति बहुत बीमार है, कष्ट पा रहा है, यहां से आपने संकल्प किया 15 मिनट में वो नॉर्मल हो जाए, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। संकल्प शक्ति हमें इतनी बढ़ानी है, लेकिन इसके लिए है इच्छा ऐसा बनने की, दिखाया है ना, महादेव को कोई याद कर रहा है, नीचे कष्ट हुआ है, तुरंत महादेव को टच होता, हिलता है, टच हुआ, कोई भक्त नीचे कष्ट में है, संकल्प किया, सकास दे दी हाथ से, ठीक हो गए। विष्णु को कोई याद कर रहा है, कष्ट में है, पहुंच गया संकल्प, संकल्प दे दिया, अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, ठीक हो गया। विष्णु के लिए है ज्यादातर सुदर्शन चक्र भेज दिया अपना, अर्थात आत्मज्ञान, पांच स्वरूपों का अभ्यास करने वालों की शक्ति ये सुदर्शन चक्र है। इससे बहुत काम होंगे आत्मिक शक्ति से। तो जो भी ऐसा करना चाहें, ये बहुत बड़ी सेवा का आधार बन जाएगा, वो अपने को व्यर्थ से मुक्त करें, साक्षी हो जाएं। व्यर्थ सोचने की आदत नहीं, जहां से हमने शुरू किया था, पर चिंतन बहुत होता है, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, वो भी पर चिंतन ही है। आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, वो सोचिंतन नहीं है। आप तो कहेंगे ये परेशान है, इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा, उसको सकास देनी पड़ेगी। सोचने से समस्या हल नहीं होगी, सकास देने से होगी। साक्षी भाव सोच लेना इस बात पर, आप इस सभा में से थोड़ी आत्माएं भी यदि इसको अपना लक्ष्य बना लें, गिनी चुनी आत्माएं, कि मुझे आने वाले समय में विश्व की सेवा करने के लिए ऐसी मन की शक्ति को जमा करना है कि जहां हम संकल्प करें वहां उनको सुख मिल जाए। कल मैं सोच रहा था, कोई एक वीडियो देख रहे थे रास्ते में, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरती हुई दिखाई गई थी, तो मैंने सोचा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब गिरेंगी तो बहुत सारे लोग उनके नीचे दब जाएंगे, वो मरेंगे नहीं, दबे होंगे, और दबे होकर कितने परेशान होंगे, कर सकते हैं कल्पना, सिर फूट गया है, आंख बाहर निकल गई है, हाथ कटा पड़ा है, लेकिन वे जिंदे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, पुकार रहे हैं बहुत ज्यादा अपने इस देवों को। तो तब हमें क्या करना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर मुक्तिदाता हूं, इस संकल्प से वाइब्रेशंस दें और संकल्प करें जो भी कष्ट पा रहे हैं अब यहां, वो सब देह से मुक्त हो जाएं, फटाफट देह से मुक्त हो जाएंगे। इस सेवा की बहुत जरूरत होगी, तो हमें साक्षी भाव धारण करना है। पहले दो बातें, पहली बात, हर आत्मा इस खेल में अपना अपना पार्ट बजा रही है। यहां किसी का कोई दोष नहीं है, दूसरी बात, सबका अपना अपना भाग्य है, भाग्य माना सबका अपना अपना कर्मों का खाता है, ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, और सबको अपना खाता चुकतू करना ही है। आपका प्रिय बच्चा है, मैं डायरेक्ट उदाहरण दे रहा हूं, बुरा तो नहीं लगेगा माताओं को, आपका अति प्यारा बच्चा है, अब उसे भी विनाश काल में कष्ट हो रहा है, होगा ही सबको, हमें ये भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। इस आत्मा का कर्मों का खाता अपना है, वो साथ है इसके, तो हम दुखी हों क्या करेंगे, बोलो, प्रैक्टिस करनी है इसकी। हम दुखी होंगे, दुखी तो बहुत होंगे, हाय मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, लेकिन दुखी होने से न बच्चे का दुख खत्म होगा और अपना भी बढ़ जाएगा। बाबा के कभी के महावाक्य हैं, तुम्हें तो ऐसा योगी बनना है जो अपने तो विकर्म विनाश करने हैं पर दूसरों के भी करने होंगे। ये बहुत हो रहा है, मैं तो बहुतों से कराता हूं। तो उन्हें अगर योगदान करेंगे तो उनके दुख दूर होंगे। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, रोज बीमारी भयानक है। आजकल बहुत केस आते हैं, जहां मैं अब गया था वहां भी कई लोग अपने बच्चों को लेकर आए, बच्चे विकलांग, कोई बुद्धि से विकलांग, बहुत कम बुद्धि। एक बहुत बुद्धिमान लड़का डबल MA कर लिया, BEd कर लिया, पैर डल होते जा रहे हैं, हाथ शुरू हो गए हैं डल होना। इन सबको मैंने सिखाया, कितने बच्चे आए होंगे, 10 आए होंगे माँ बाप लेकर आए, कि इनके लिए 1 घंटा पावरफुल योग करना ही होगा। किसी डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आता, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी, इसके पैर डल क्यों हो गए हैं, चल नहीं सकता हो, डल हो गए, हाथ डल होने शुरू हुए, कारण पूर्व जन्मों का कर्मों का खाता। मैंने पूछा उसकी माँ जो आई थी, योग लगता है? नहीं, योग तो नहीं लगता। अब योग भी नहीं लगेगा, उसको देख देख दुखी हो रही है, तो वो भी उसमें भी गिरावट और माँ में भी गिरावट, डबल नुकसान। अगर पावरफुल योग कर दें अच्छा। फिर उस लड़के को मैंने पूछा, तुम्हारा योग लगता है? मेरा लगता है, ज्ञान में है कई दिनों से। तो तुम अपने लिए पावरफुल योग करो। मैं एक बात जो सदा कह रहा हूँ, आप सबको भी कह देता हूँ, क्योंकि वो बात सभी समझ नहीं रहे हैं, ब्राह्मण भी, मैं समझा देना चाहता हूँ सबको, क्योंकि ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है, बाबा ने इशारों में बताई थी। क्या बताया था वो भी सुन लो आप। ऐसा समय आएगा विनाश काल का, जब हरेक के ऊपर पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। उस समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक चीज और है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, सभी के ब्रेन में विकर्म जागृत हो रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो कुछ आत्मा में भरा हुआ है वो मनुष्य के ब्रेन में भी रिकॉर्ड रहता है, केवल आत्मा में नहीं, जो कुछ आत्मा में है उसी अनुसार तो शरीर बनते हैं ना, पता हो सबको। शरीर की रचना आत्मा की स्थिति और वाइब्रेशंस के अनुसार बनती है गर्भ में। तो जो कुछ आत्मा में होता है वो पूरे शरीर में भी रहता है और ब्रेन में प्रिंट है। तो बहुत सारे विकर्म अब एक्टिवेट होना प्रारंभ हो गए हैं, विकर्म एक्टिव हो रहे हैं अब, किसी के शुरू हो गए, किसी के होंगे। जिसे बहुत विकर्म विनाश कर दिए उसके बहुत समाप्त हो गए, बड़े लाइटली एक्टिव होंगे। सतयुग त्रेता का भी सब कुछ इधर है और द्वापर कलयुग का भी हमारे ब्रेन में ही है। सतयुगी देवत्व को अगर हमें जगाना है तो स्वमान, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, गहरी फीलिंग, उससे देवत्व जगने लगेगा। इसलिए बाबा ने, आप सुनते आते होंगे अव्यक्त मुरली पुरानी बहुत बैठे हैं, ओम शांति भवन जब बना तब से ही, अभी ज्ञान सरोवर भी नहीं था, शांति वन भी नहीं था, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ये ड्रिल चालू करा दी थी, कराते थे बाबा प्रैक्टिकल में, क्योंकि वे 5 स्वरूप बहुत सुंदर अनुभव कराने वाले हैं। मैं आपको उनमें से एक बता देता हूं, अभ्यास करना उसका। जब बाबा ने कहा तुम आत्माएं, तो एक सुंदर बात और कही थी, तुम जब परम धाम में हो तो तुम बाप के बहुत समीप हो और तुम्हारी चमक और सब आत्माओं से बहुत ज्यादा है। हर एक आत्मा के वाइब्रेशन फैलते हैं ना, औरा प्रभा मंडल, किसी किसी का बहुत दूर दूर तक रहता है। जहां तक एक आत्मा का औरा होगा वहां तक दूसरी आत्मा नहीं आएगी, उसके बाद होगी। तो हम ऐसी आत्माएं हैं जिनकी चमक, जिनका औरा प्रभा मंडल बहुत ज्यादा है। अपने स्वरूप को देखा करें, परम धाम में हम बाबा के पास भी हैं और हमारा ये आभा मंडल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ है। साक्षी भाव, दो बातें हुई, हर आत्मा का यहाँ अपना अपना पार्ट है, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कईयों ने मेरे से प्रश्न पूछा, फिर तो आतंकवादियों का भी दोष नहीं है, फिर तो पापियों का भी दोष नहीं है। नहीं, वो कलयुग का प्रभाव है उन पर, उनमें दूसरी भावनाएं हैं, और आप आगे चल के देखेंगे कि वो भी उनका दोष नहीं होगा, वो विनाश के कारण बन जाएंगे, फायदेमंद होगा, कलयुगी दुनिया समाप्त होगी। तीसरी बात बहुत सूक्ष्म और बहुत गुह्य, जो कुछ हो रहा है, ये बाबा के शब्द हैं, आपने भी इसका प्रयोग किया होगा, करें, मैंने तो बहुत किया जब से सुना, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। तीसरी लाइन भी बहुत अच्छी, वही होना चाहिए, बहुत गहरी बात है। इस दृष्टि से इस खेल को देखना। अब एक चौथी बात, ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनो, ये वो अनुभव हैं जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, सुनाने वाले भी इस बात को सुनाते नहीं होंगे। बाबा शांत में बैठकर, मुरलियों से ये है सब, सोचते थे, सतयुग में हम आए थे, सतयुग बीता, एक दिन बीता, दूसरा बीता, तीसरा, साल बीते, वर्ष, युग, युग बीते, यहां आ गए हैं, अब चलना है। तो जो कुछ होगा चलने से पहले, नथिंग न्यू, वही होगा जो कल पहले हुआ था, बहुत गुड फीलिंग अपने को देंगे। अब देखो बाबा ने ये महाविनाश कितनी बार देखा होगा बताओ, अनगिनत, अनगिनत में से कुछ गिनती कर लो। इसीलिए तो वैज्ञानिक खोज करते हैं ना, ये सोने का पीस मिला 4 अरब साल पहले का है, क्योंकि सोना तो अविनाशी है ना, सोना तो विनाश होता ही नहीं, 4 अरब भी क्यों, उससे भी पहले का है। तो आप सोच लो, बाबा ने अनगिनत बार में से 1000 बार ये विनाश देखा है, तो जब अब की बार वो देखेगा उसे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कुछ भी नहीं, ये तो होना ही है, और इन बच्चों के फायदे के लिए तो कर रहा हूँ, इनको सुख देना है मुझे, बहुत गंदगी हो गई, इनके सोने के महल भी खत्म हो गए, ये मिट्टी के मकानों को ही मेरा मेरा कर रहे हैं, था क्या इनके पास, अब इनको ले चलना है मुझे, ऐसा ही लगेगा ना उसे। हमने भी तो देखा है, हमने भी 1000 बार देखा है, हमें जगाना है उस स्मृति को। बाबा का तो भूलता ही नहीं, ऐसे दीदी है निराकार, हमें जगाना है, ये होगा साक्षी भाव कि जो खेल चलेगा विनाश का वो चलना ही है, वो कल्याणकारी है, क्योंकि सभी आत्माओं को देह छोड़कर घर जाना है, जाना ही है, समय आ गया जाने का। अब दिन निकल गया, सूरज उग गया है, उठना ही है। ठीक है, कोई लेट उठे पर उठना तो पड़ेगा, उठना है। इस दृष्टि से इस खेल को देखना, ये है साक्षी भाव। इसमें एक चीज मैं और जोर देना चाहता हूँ, जो पास्ट हो गया क्या करें, उसे बोलने की भी आदत डालें। देखो बहुतों के साथ क्या हुआ है, इस पे आप ध्यान देंगे और इस बात से भी अपने को मुक्त करेंगे। अब से 40 साल पहले एक बुजुर्ग माता है, उसने देखा अब से 40 साल पहले उसके एक जवान लड़के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके जवान भाई की मृत्यु हो गई। अब उसने वो दुख सहन तो कर लिया, पर उसकी छाप दिमाग पर रह गई, वो अब तक है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा केवल, ऐसी हरेक के जीवन में जो बुरी बातें हुई हैं, उनकी छाप दिमाग पर लेकर हर व्यक्ति चल रहा है। किसी को भूल भी गई होंगी वो बात, लेकिन उनका इफेक्ट, उनका इम्प्रेशन दिमाग पर है, उसे हटाना है। लक्ष्य बनाए इसको, पास्ट के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना है, नहीं तो वर्तमान का आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि वो गहरा दबाव बनाए रखता है दिमाग पर, वो एक प्रेशर होता है दिमाग पर, और जिसके दिमाग पर प्रेशर बहुत रहता है उनको बीमारियां बहुत रहती हैं। प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एक ही बात है ना। प्रेशर नहीं रखना है, हल्का करो अपने को। और बाबा मेरा साथी है, उसको सौंप कर हल्के रहने की आदत बनानी है, पास्ट के इम्प्रेशन से हटना है। किसी ने आपको कष्ट दिया है, सताया है, बुरा व्यवहार किया है, सबसे भारी चीज मनुष्य को रहती है बुरा व्यवहार, होता है या नहीं भारी, इंसल्ट। सब कुछ मनुष्य सह लेता है, लेकिन बार बार कोई इंसल्ट करता हो तो मुश्किल हो जाता है। उनको भी क्षमा करके अपने ब्रेन को साइलेंट करेंगे, चलो अब बाबा मेरे साथ है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो सभी, अब हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत माल हो गया ना। साक्षी रहना है, साथी को साथ रखना है, आह्वान भी रखना है। बस एक बात मैं आपको ये और कहना चाहूंगा, अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करें, प्लानिंग भी तीन तीन मास की, पूरे जीवन की नहीं, तीन तीन मास की, और तीन तीन पॉइंट में करें, 3-point plan for 3 months। और उसमें तीन बातें ही ले लें, पहला किसी एक गुण पर विशेष अटेंशन, जैसे हमने ले लिया संतुष्टता, 3 मास मुझे संतुष्ट मणि बनकर रहना है। दूसरे 3 मास के लिए ले लिया सरलता, फिर ले लिया शुभ भावनाएं, फिर ले लिया त्याग वृत्ति, से ले लिया न्यारे और प्यारे, ऐसे एक एक जो हमारी धारणाएं हैं गुण अलग होते हैं, ये बड़ी धारणाएं मानी जाती हैं। संतुष्ट आत्मा, संतुष्टता गुण भी है, सरलता भी गुण है, पर बहुत बड़ी धारणा है ये। न्यारापन प्यारापन, प्योरिटी ले लें, क्रोध मुक्त होना है ये ले लें, मैंपन का त्याग करना है ये ले लें, और दूसरी पॉइंट स्वमान, दो तीन स्वमान ले लें, और तीसरा योग अभ्यास। और मैं सार में आपको यही कह दूं कि बिना चार घंटे योग किए कोई भी माया जीत नहीं बन सकता। माया को हराने के लिए चार घंटे योग तो प्रतिदिन होना ही चाहिए, कर्म में बैठ के जो जितना भी करे, पर कर्म में। तो इन बातों पर सभी ध्यान देंगे, और बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी यहाँ सब बैठे हैं, सभी अब आने वाले समय के लिए तैयारी करें। मैं विनाश की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद में करेंगे। संसार को देने की तैयारी, देना होगा। और बहनों को मैं कहूंगा अपने अपने सेंटर को लाइट हाउस बनाओ, माताओं को कहूंगा अपने अपने घरों को मंदिर बनाओ, और सबको कहूंगा अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाएं, चलता फिरता तीर्थ, क्योंकि आने वाले दिनों में आत्माएं लेने आएंगी, ज्ञान नहीं दिया जा सकेगा। अब विनाश हो गया, लंबा चौड़ा एक शहर नष्ट हो गया, थोड़े लोग बचे हो ज्ञान नहीं सुनेंगे, उन्हें चाहिएंगे शांति के वाइब्रेशंस, उन्हें जरूरत होगी शक्तियों के वाइब्रेशंस की। इसके लिए स्वयं को तैयार करें। ओम शांति।